صفحہ نمبر 23 باب 2۔ جب اورنگزیب نظام مملکت کو درست کر رہا تھا کہ رعایا امن و امان اور بہتر حکومت سے دوچار ہوں، تو ہندو راجہ جو کچھ تو اس کی دوستی اور اپنی حیثیت بڑھانے کی خاطر اور کچھ فوج میں عہدوں کے حصول کے لیے دربار میں حاضری دینے لگے، اورنگزیب نے اس کی تواضع میں کبھی کوئی کمی نہ کی اور وہ ہر ایک کو آسودہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم ہم انسانوں کی فطرت میں یہ خرابی ہے کہ ہم ہمیشہ خود کو زیادہ کا مستحق خیال کرتے ہیں۔ پس ان میں سے 3 راجہ ان عہدوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے جو فتح بادشاہ نے انہیں پیش کیے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اعلیٰ درجے کے راجہ ہیں، اس لیے اس عہد نے عہد سے اور تنخواہ کو قبول نہیں کر سکتے تھے جس کی پیشکش انہیں ہوئی تھی۔ یہ سن کر اورنگزیب خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی ناراضی کا کوئی اظہار نہ کیا۔ اس بات سے ان راجاؤں نے یہ فرض کر لیا کہ اسے اس کی بہت سخت ضرورت ہے، لہٰذا اپنے جواب سے وہ اور زیادہ مغرور اور پر خود غلط ہو گئے۔ لیکن 3 دن بعد اس نے خفیہ احکامات صادر کیے کہ ان کے سرتم کر دیے جائیں۔ پس بلا کسی شک کو شبہ میں مبتلا ہوئے انہوں نے جنگی تلواریں کو اپنی گردن پر دیکھا، تمام معذرتیں اور معافیاں ان کے کسی کام نہ آئیں، ان تینوں کا سر کاٹ لیا گیا اور انہیں شاہی قلعے کے پھاٹک پر نصب کر دیا گیا۔ اس عمل سے دوسرے راجاؤں چوکنے ہو گئے اور انہوں نے ان تمام شرط کو بلا غدر قبول کر لیا جو اورنگزیب نے انہیں پیش کیے۔ اس نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر 30,000 سوار، 50 ہلکی توپیں بیکانر کے عام حاکم راجہ کرن کے خلاف بھیجی جائیں۔ اس مہم پر سلار رضا ناز خان تھا۔ اورنگزیب کی تاج پوشی کے بعد اس راجہ نے دربار میں حاضری سے انکار کر دیا اور اس کے لیے نہایت واضح احکامات یہ تھے کہ نافرمانی کے بدلے اس کا سر لایا جائے۔ جب راجہ نے سنگھ کو جو راجہ کر ان کا رشتہ دار تھا یہ علم ہوا تو اس نے بادشاہ سے تھوڑی سی مہلت مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ اس اثنا میں راجہ کرن کو دربار میں کورنش بجا لانے کے لیے پیش کرے گا۔ اس بات کے پیش نظر راجہ سنگھ نے منتظر کرا اور راجہ کو یہ لکھ بھیجا اور اورنگزیب سے جیسے زبردست اور حکمران سے یکر لینی خلاف مسلط ہے، لہٰذا تو میرا یہ مشورہ ہے جو میں عزیز اور دوست کی حیثیت سے دے رہا ہوں، مان لو اور فوراً یہاں آ جاؤ، جنگ مت کرو اس لیے کہ اورنگزیب بہت طاقتور ہے۔ آؤ، اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف جنگ کی تو میں نہ تمہارا دوست رہ سکتا ہوں اور نہ کسی طور تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اس کے برعکس میں اس بات پر مجبور ہو جاؤں گا کہ تھارے خلاف جنگ کروں۔ راجہ کون سے جو نہایت طاقتور ہندو راجہ تھا، راجہ جے سنگھ کو یہ جواب دیا کہ میں آپ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اپنے ابا اجداد کی قائم کردہ رسم کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، ان میں سے کبھی کسی نے دربار کی حاضری قبول نہیں کی، اس لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ قدیم رسم سے منحرف ہونے کے بجائے میں 1,000 مرتبہ اپنی جان دینے کو ترجیح دوں۔ میری صدق دل سے یہ خواہش ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے مگر اس طرح کو مجھے دربار میں حاضری پر مجبور نہ کیا جائے۔ راجہ سنگھ نے سارا معاملہ اورنگزیب کے سامنے رکھا جس نے راجہ کو ان کے مضبوط ارادے کے پیش نظر درگزر سے کام لیا، لیکن راجہ کو یہ حکم دیا کہ وہ دکن کے بجاپور کے ایک باغی شیو جی کے خلاف مہم پر روانہ ہوں۔ اس مہم کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ راجہ کرن احکام بجا لایا مگر اس طرح گویا وہ جنگی مہم پر جانے کے بجائے محض سیر و تفریح کے لیے نکلا، وہ محض رات کو سفر کرتا اور وہ بھی بمشکل چند میل۔ اورنگزیب نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی درگزر کرنا مناسب سمجھا۔ عقل مند حکمران اکثر اوقات بناوٹ سے کام لیتے ہیں اور تھوڑے پر اس لیے اکتفا کرتے ہیں کہ مستقبل میں زیادہ سمیٹ سکیں۔ وہ شخص جو اپنے اقتدار کے شروع میں बड़ों से बर्ताव करते हुए बुजली काम कर लेता है, बादजां वक्त निकल चुकने के बाद अपनी बुजली पर कैफ अफसोस मिलता है। औरंगजेब ने अपने मकासद के हसूल के लिए वादे वईद करने में बहुत फ्रांखल था, लेकिन साथ ही वो ये भी तय कर लेता था कि वो अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहेगा। इसका वसूल, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, ये था कि कसम को महज धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और कारीन इस बात की सदाकत का अंदाज मेरी तारीख से लगा सकते हैं। इस तरह उसने शेव जी से अहद तोड़कर ये सौदा उसे महंगा पड़ा, इसलिए कि आज तक जब मैं ये लिख रहा हूँ और वो हत्ता कल मकदूर इसकी एक राजा से टूटने में मसरूफ रहा। अपनी बादशाहत को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम देख कर औरंगजेब ने अपने मामू शायशा खां को एक शुक्र साबर के साथ भेजा कि वो शिवाजी को खराज देने पर मजबूर मजबूर कर सके और उसे वो माल न वसूल करने से रोक दे जिनकी मराद उसे शाहजहां के खिलाफ बगावत के अजाम में मिली थी। इसकी नज़र में उस इकरारनामे की कोई वक़त ना थी जो तांबे की तख्ती पर लिखवा कर खुद उसने उसे बख्शा था और जिस पर मरात मरकूम थी। शाइस्ता खां को ये हुक्म भी मिला के बिचारपुर और कोलुंड कंडा के हुक्मरान को भी धमाकाए और इन्हें ज्यादा खराज देने पर मजबूर करे। इन काबले रहम और डरपोक मखलूकों ने तो वही किया जो औरंगजेब चाहता था, मगर शिवाजी का अमल मुख्तलिफ था। वो जंग पर डट गया और कभी इस उम्मत से भी कभी उस समेत से हमले करके मुगल सल्तनत और बिजारपुर में लूट मार शुरू कर दी और बहुत से कलों और इलाकों को तस्खीर कर लिया। औरंगजेब की ताजपोशी के बाद जिन लोगों ने फौरी तौर पर दरबार का रुख किया, उनमें औरंगजेब का एक सबक अतलीक मुला सलाह भी था। ये शख्स इस आमदनी पर जो शाहजहां ने उसके लिए मुकर्रर की थी काबल में गुजार उकात करता था। अपने शागिर्द को मुबारकबाद देने के लिए रवाना होने से पहले उसने कुछ तवक्फ किया, फिर मुसलमान उलमा के आम लबास से ज्यादा पुरतकल्लफ लबास जेब तन करके वो अपने सफर पर रवाना हुआ, यहाँ तक कि दिल्ली पहुंच गया। यहाँ आकर अव्वल अव्वल उसने अमरा के यहाँ हाजिरी देनी शुरू की और हर एक की आनत उसके मकसद के लिए चाहिए कि इस पर बादशाह का इल्तफात ज्यादा हो और वो अतियात में ज्यादा फ्याजी कमाए। औरंगजेब के अपने उस्ताद की आमद की इतला मिली, मगर वो टाल गया ताकि उस दौरान वो उससे गुफ्तगू करने के लिए खुद को तैयार कर सके और इसी बहाने अपने बेटों की अतालिकों को ये सबक दे सके कि शहजादों की तरबियत किस पहुंच पर होनी चाहिए। बस इस तरह 3 माह की मुद्दत गुजर चुकने के बाद मुल्ला सलाह को अपने शगिर्द की जियारत नसीब हुई। बिलाखर वो दिन आ गया जब मुल्ला सलाह को बादशाह के हजूर में हाजिर होना था। औरंगजेब ने मखसूस उमरा उलमाए दीन और अपने बेटों की अतालिकों को यह हुक्म दिया कि वो इस तकरीब में हाजिर हों। इस खबर पर बहुत खुश होकर वो किसी बड़े इनाम की तवक्का के साथ मुल्ला सलाह दरबार में हाजिर हों और दरबारी रसूम के मुताबिक कोर्निश बजा लिया। तब बादशाह ने मिला को अपना मुंह खोलने का मौका दिए बगैर बगैर यूं कहना शुरू किया, उस्ताद मोहतरम, इस दुनिया के किसी साहिब औलाद बादशाह या शहजादे का पहला फरीजा ये है कि वो किसी मजबूत सेहतमंद अज़ा वाली अना की तलाश करे जो बच्चे को दूध पिलाए ताकि उसके कमज़ोर अज़ा मजबूत हो और तवाना हो। बच्चा दूध के साथ अपनी अना की सेहत भी कबूल करेगा और यूं शाही तवाक़ियात के मुताबिक वो अपनी राया के लिए अच्छा हुक्मरान बनने की कुव्वत हासिल करेगा। लेकिन बादशाह की परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बरअक्स जितनी परेशानी उसे दूध पिलाने वाली अना की तलाश में हो गई, उससे ज्यादा फिक्र नन्हे शहजादे की तरबियत के लिए अतालीक को जुस्तजू में करनी होगी। इसलिए जिस तरह दूध पर बच्चे की सेहत का दारमदार होता है, इस तरह उसकी जहनी जिंदगी का इन्हिसार अच्छी तालीम पर है। और चीज महज जिस्मानी वजूद ज्यादा अहम है। यही वजह है कि तमाम सनशाहों, बादशाहों और राजाओं ने हतल अमकान की कोशिश अपने बेटों के वास्ते अच्छे तालीक के हसूल के लिए की है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते रहे कि इस शेर रूहानी के बगैर बच्चे बाप की खसूसियात मोहकम नहीं होगी, ना ही वो अपनी राया को तवक्कात के मुताबिक कामयाब हुक्मरान साबित होगा। ये मुमकिन है कि बालग होकर शहजादा उम्र के अच्छे दर्स को भूल जाएगा और खुद को आम इंसानी बुराइयों के सुपुर्द कर देगा, मगर ये नामुमकिन है कि गरीब तरबियत याफ्ता बच्चा बड़ा होकर खूबियों का हामल हो बन जाएगा। इसी बायस हकीम अरस्तू ये कहता है कि जिस कदर बच्चे बाप के मरहूने मिन्नत होते हैं, उसी कदर उस्ताद के। एक का काम जिस्मानी जिंदगी अता करना है और दूसरे का काम रूहानी। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये समझता हूँ कि शागिर्द अपने वालदैन के मुकाबले में उस्तादों के मिन्नतकश ज्यादा होते हैं। यूं कि जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी के बगैर किसी कदर के हामिल नहीं होती। और अगर किसी शख्स को रूहानी जिंदगी नसीब ना हो तो उसके लिए ये बेहतर है कि वो मादी जिंदगी भी कबूल ना करे। यही वो खूबी है जो आला तरबियत का नतीजा होती है और जिसके बगैर कोई शख्स भी अच्छा हुक्मरान नहीं बन सकता। इल्म के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं, ना ही अदल के बगैर राया के लिए अमन व अमान का अमकान है। इल्म अकल का काबिले एतमाद राज, खुद फरेबी का इलाज, सितमजों का कामन, मुजलमों की पनाहगाह और बदों के लिए दहशत बने होशमंदी रियासत और माशरे का जमीर और एतदाल का रास्ता है। उसकी हैसियत अंधेरे में रोशनी और सितारों के दरमियान आफताब की है। खुश नसीब है वो शहजादा जिसे कोई आलम मिल जाए जो उसे पूरी वफादारी और मोहब्बत से इन आला सिफात और खूबियों का हमल बनाए जो जो किसी बादशाह के लिए मुनासिब होती है। और मैं किस्सा कहानियों और दुनिया की तारीखों में ऐसे बेशुमार शहजादों, बादशाहों और हुक्मरानों के तज़क्कर से खुश होता हूँ जिन्हें यह खुश नसीबी हासिल हुई। लेकिन इसे मुला सलामे इस बात को याद करके ना रो तो क्या करूँ कि अपनी कम उम्र में आपकी जेर निगरानी आ गया और आपने मेरे इस आला जहन को नजरअंदाज करते हुए जो कुदरत की जानब से दो नोयत हुआ था, मुझे ऐसी फजूल और ला यानी बातें सिखाई जिसका मुझसे कोई तल्लुक ना था और इस तरह मेरा वक्त जाया किया, या कम अज कम मुझे वो बातें बताई जो उलमाए गुफ्तगू में जेवर सखन बन सकती थी, और इन बातों से दरगुजर किया जो किसी शहजादे की तरबियत के लिए जरूरी थी। मिसाल के तौर पर, क्या आपने मुझे दुनिया की सल्तनतों के मुतलक यानी अशोरियों और ईरानियों या सथेरियों के बारे में कुछ बताया जो पहले खालों का लबास जेब तन करते थे, पहाड़ों में रहते थे और तादाद में बहुत कम थे, मगर आज तुर्कों के नाम से सारे एशिया और अफ्रीका पर मुसल्लत हैं और हुकूमत की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाले हुए हैं। आपने मुझे पूरियों की सजात और कुवते इजाद इख्तरा के बारे में कब बताया जो ने अपनी मुख्तसर कुवत से आसमानियों की जबरदस्त ताकत का मुकाबला किया और इन्हें पसपा कर दिया, या कम अज कम आप चीन की इज्जत और दौलत के बारे में ही मुझे मुतला करते। ये तमाम मालूमात आपने मुझ तक कभी ना आने दी। ये भी मुमकिन है आपका इलम मुमकलत हिंदुस्तान और उसके हुक्मरानों तक ही महदूद हो, इसलिए कि आपने मुझे ये बताया था कि दुनिया में और सुल्तान में यही में ही नहीं और जूं ही वो कम मार और बेहसियत हुक्मरान है, आपने मुझे इनकी अफवाज, उनकी जंगों, उनकी रसूम, उनके मजहब, उनकी तर्ज हुकूमत, तजारत के मुतल्लक कुछ ना कुछ बताया। मुझे आपसे खुद अपने इजदाद यानी मशहूर जमाना तैमूर या जंगजू बाबर का नाम तक बामुश्किल मालूम हो सका जो इस सल्तनत के बानी थे। आपने मुझे उनके सवा हयात, उनकी हैरत अंगेजी फतुहात, तारीख़ अरब, सिनफ बंदी, अफवाज या सलाहरी सपा के बारे में कुछ बताने की कभी कोशिश नहीं की। आपकी सारी कोशिश का मकसूद महज ये रहा कि आप मुझे अच्छा खासा रब बना डालें, और यूं ही मेरा सारा वक्त इसी जबान के सीखने में बर्बाद कर दिया, जिसमें थोड़ी सी बहुत महारत हासिल करने के लिए 10-12 साल की मुद्दत दरकार होती है। इस दौरान मेरी नौजवानी और आला ख्यालात के हसूल की सलाहियत ख़त्म हो गई। अगर मैं वाकई किसी शख्स का बरहुने मिनत हूँ तो वो शेख मीर हैं, जिनका मैंने बेहद शुक्रगुजार हूँ और जिन्हें मैं अपना अतलीक कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे खूब फन हरब सिखाया। वो ऐसा शख्स था जिसने मेरी मोहब्बत में अहमबीर के नज़दीक एकदार के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जान तक दे दी। अगर आपको फ़न हरब से वाकफियत ना थी तो कम अज़ कम ऐसे मौके के लिए, जबकि मेरे वालिद मुझे किसी ओहबे की हुकूमत सौंपते, आप मुझे तरीके हुक्मरानी ही सिखा सकते थे। आप अदलो इंसाफ के कानून रकम कर सकते थे, ये बता सकते थे कि आवाम में किस तरह मकबूलियत हासिल की जा सकती है और के किन हालात में अमरा की सरकशी और बाजार की बदतमीज़ियों के पेश नज़र सख्ती दरगुजर से काम लिया जा सकता है और बेजाबगियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपको मुझसे ये सब कुछ सिखाना चाहिए था, लेकिन इस किस्म की बातों के बारे में आपने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। बस मुझे आपसे कुछ नहीं बल्कि आपसे मुझे गुमराही क्या। लिहाजा अब आप जाएं और कुछ हीरे बाप ने आपको बख्शा है, इस इस्तीफा करें, मेरे सामने कभी ना आए, इसलिए कि आपने मेरा बहुत वक्त ज़ाया किया है और आप ही गलती के बायस आज का दिन बर्बाद किया गया है। इस तकरीर के बाद औरंगज़ेब महल सरा में वापस चला गया और अमरा को वर्ता हैरत में डाल दिया। उल्मा और ज़्यादा मुतफ़िक्र हुए, बिलख़ुसूस वो जो उसके बेटों के अतालीक थे वहाँ मौजूद थे। मुल्ला सलाह ये हालत मायूसी मुँह लटकाए दरबार से चला गया और जल्द ही लापता हो गया। इसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। जब शाहजहाँ बादशाह था और दिल्ली में रहता था तो बेगम साहिबा की रहाइश अपने महल में ही थी, जो किला मोहल्ला से बाहर वाक़ था। रोशन आरा बेगम में इसी किस्म की आज़ादी और तफरी के लिए बचपन थी। औरंगज़ेब की मोहब्बत और एहसास ममूनियत पर भरोसा करते हुए उन्होंने ये दरख्वास्त गुजारी कि इन्हें वही महल दे दिया जाए ताकि वो कला मोहल्ला से बाहर रह सके और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। औरंगज़ेब इस इल्तजा के मफहूम को समझ गया, लेकिन आमदन इस बात को दरगुजर करते हुए उसने ये जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन रोशन आरा बेगम, मैं सदक दिल से तुम्हारी ख्वाहिश मानने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारे लिए जो बेपनाह मोहब्बत मेरे दिल में है उसके पेश नज़र ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी रफाकत से महरूम हो जाऊं। रवाज के मुताबिक अपने बाप के महल से बाहर नहीं रह सकती और मेरी बेटियां तुम्हारे फ़िराक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कई वजूहात की बना पर यह बेहतर होगा कि तुम उनके साथ ही रूह और रहो और इन्हें शहजादियों के मुनासब हाल तरबियत दो। क्या किसी वजह से महल में जहाँ तुम रहती हो किसी शय की कमी है, या तुम्हारी अमलाक बेगम साहिबा की अमलाक से कम है? तुम्हें बखूबी मालूम है कि मेरी सारी मलकियत और मुग़लों की सारी दौलत सब कुछ तुम्हारा है। शाही महल के बारे में ये इसी किस्म की दिगर इतलाआत मुझे आप पर लगाई खातून तुमाजार सुन से मिला करती थी, जिसे हगली की फतह के वक्त मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया था। शाही दसर खुआ की जिम्मेदारी उसके सबूर थी और रोशन आरा बेगम उसे बहुत अजीज रखती थी। इस कायदे के मुताबिक जो महसरा में रहायश पजीर सिपाहियों की बीवियों पर मुताबकत होता था, उसे ये इजाज़त थी कि वो एक माह में 7 दिन अपने शोहर के घर रहें। इन दिनों में इस रबत के सब वो जो मुझसे रखती थी, इन तआइफ़ के अलावा जो वो मेरी ज़िंदगी मेरी नज़र आती महसरा के बारे में ऐसी इतलाआत भी मुझे बहम पहुंचाती थी। चंद माह बाद मताहत ख्वाजा सराओं ने बादशाह के ख़ास ख्वाजा सरा को ये इतला दी کہ کس طرح دو اشخاص روشن ارا بیگم کی رہائش گاہ میں داخل ہوتے دیکھے گئے۔ چونکہ یہ معاملہ نازک تھا اس لیے خواہ پیرا چپ ہو رہا اور بلا کسی تنبیہ کے اس نے دو معتبر چوکی داروں کے ذمے یہ کام کیا کہ وہ حقیقت کا پتہ لگائیں۔ چند دنوں میں ان محافظوں نے باغ میں دو نوجوانوں کو پکڑ لیا جنہیں روشن آرا بیگم نے مطلب باری کے بعد فارغ کیا تھا۔ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا جس نے فوراً یہ بھانپ لیا کہ وہ وہاں کیوں گئے تھے اور بلا کسی تحقیق کے یہ حکم دیا گیا کہ قیدی جس آہ سے اسے واپس چلے جائیں۔ کہ ایک نے یہ کہا کہ وہ دروازے سے آیا تھا اور دوسرے دروازے سے واپس جانے کی اجازت دی گئی، دوسرے بے احتیاطی سے یہاں یہ کہہ کر گزر گیا کہ وہ باغ کی دیوار پھاند کر آیا تھا۔ شاہی خواجہ سرا نے جسے یہ فکر و دامنگیری تھی خود پر عائد رشد لاپرواہی کے الزامات کا بدلہ لے اس شخص کو باغ کی دیوار پر سے نیچے پھونک دیا جس کے باعث وہ مر گیا۔ اورنگ زیب خواجہ سرا کی اس حرکات سے بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ وہ اس نازک معاملے کو جس سے شہزادی کی عزت وابستہ تھی پوشیدہ رکھنا ہی قرین مسلط تصور کرتا تھا۔ اس واسطے خواجہ سرا کو چند یوم کے لیے اس قحدے سے معزول کر دیا گیا اور اس کی توجہیں یوں کی گئی کہ وہ محسرا کے ملازموں پر معمولی سے زیادہ سختی کرتا ہے۔ یوں خواجہ سرا نے مجبوراً روشن آرا بیگم کے گناہ اپنے سر لے لیے، مگر شہزادی کے لیے اورنگزیب کی مجوسی میں کچھ کمی آ گئی اور کچھ دنوں بعد اس قسم کے اسباب کی بنا پر اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، جس کا ذکر میں مناسب مقام پر کروں گا۔ بالعموم موسرا میں مختلف نسلوں کی 2000 عورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا کام اپنا منصب اور مخصوص فرائض ہوتے ہیں، یا تو وہ بادشاہ کی حضوری میں ہوتی ہیں یا پھر ان کی بیویوں اور یا پھر بیٹیوں کی حضوری میں ہوتی ہیں۔ اس آخری طبقے میں نظم قائم رکھنے کے لیے ہر ایک کی آرائش گاہ ہوتی ہے اور ہر ایک کی نگران ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے لیے 10-10, 12-12 خادمیں ہوتی ہیں جنہیں مدرجہ بالا عورتوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ نگران عورتوں کے علاوہ ناظم موسیقی اور ان کے ساتھ زندہ خواتین بھی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں میں کچھ شہزادیوں کو پڑھا لکھنا بھی سکھاتی ہیں اور بالعموم وہ انہیں عشیقہ اشعار ہی لکھواتی ہیں۔ محسرا میں عورتیں جس طرح بادشاہ کی حضوری رہتی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ جس طرح بادشاہ کے مختلف عہدے دار باہر ہوتے ہیں، اسی طرح محل کے اندر بھی صنف نازک کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا جاتا تھا۔ ان خواتین میں بعض ان اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتی ہیں جن پر ماہر عمرہ ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ خود باہر نہیں آتے تو انہیں ممتاز عورتوں کے ذریعے باہر کے عہدے داروں کو وہ احکامات ملتے ہیں جو محسرا کے اندر سے دیے جاتے ہیں۔ ان عہدوں پر جو خواتین فائز ہوتی ہیں ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جاتا تھا۔ ان میں حاضر دماغی اور معاملہ فہمی کی صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے اور وہ پوری سلطنت کے حالات سے بخوبی واقف ہوتی ہے، اس لیے جب باہر کے عہدے دار بادشاہ کے لیے ضروری اطلاعات تحریری صورت میں محل سرا بھیجتے ہیں تو یہ عہدے دار خواتین ہی بادشاہ کے امام پر ان کی جوابات بھیجتی ہیں۔ ان سرابا مہر خطوط کو لانے سے جانے کے لیے خواجہ سرا ہوتے ہیں جو ان معاملات کے متعلق ایک جانب سے دوسری جانب مخے جاتے ہیں۔ بادشاہ نصف شب تک جاگتا ہے اور مسلسل کام میں مشغول رہتا ہے، وہ محض 3 گھنٹے سوتا ہے اور نیند سے فارغ ہو کر فریضہ نماز ادا کرتا ہے جس میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ سال کے 40 دن تو باقی ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے اور حکمت عملی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ زمین پر سوتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور خیرات کرتا ہے۔ لیکن آج کل جب کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور دشمن اسے اس قسم کے کام نہیں کرنے دیتے تو وہ مجبوراً آرام کرتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ وہ امور سلطنت پر غور و فکر کرنے کے بعد احکامات صادر نہ کر سکے۔ بس 24 گھنٹوں میں وہ محض 1 وقت کا کھانا کھاتا ہے اور 3 گھنٹے سوتا ہے۔ بوقت خواب اس کی حفاظت کا کام ان کنیزوں کے سپرد ہوتا ہے جو بہت ہی بہادر ہوتی ہیں اور तीर मान और दिगर हथियारों के इस्तेमाल ताक होती हैं। शाही बावची खाने के खराजात के लिए रोजाना 1,000 रुपए की रकम दी जाती है। मुलाजम इस किस्म से अशियाए ज़रूरत का बंदोबस्त करते हैं। इन्हें मुकर्रर तादाद में मुख्तलिफ इकसाम के गोश्त और खाने शाही दस्तरखान पर चीनी के बर्तनों में सोने की तापियों पर सजा कर रखने पड़ते हैं। अजारा अनायत बादशाह उनमें से कुछ या बचा हुआ बेगमात शहजादों और मुहाफ़ज़ दस्ते के सिलारों को भिजवा देता है। इन इज़्ज़त अफजाई की महंगी कीमत अदा करनी होती है, इसलिए कि वो ख्वाजा सरा जो खाना ले जाते हैं अच्छा खासा इनाम लेकर ही मिलते हैं। जब बादशाह किसी दुश्मन के मुल्क में हो जहाँ चीज़ें गिरा हों तो वो इस मुकर्रर रकम का चंदा ख्याल नहीं किया जाता। खाने पर मुकर्रर इकसाम के गोश्त होने ज़रूरी हैं, यहाँ तक कि किसी महम के मौके पर अखराजात पर कोई पाबंदी होती ही नहीं। लेकिन महसरा में बेगमात शहजादियों और तमाम दिगर औरतों के अखराजात के लिए अलहदा अलहदा रकूम मुकर्रर होती है। गो औरंगज़ेब ने मौसीकी को ममनून करार दिया गया, मगर महसरा में बेगमात और बेटियों की तफरी तबाह के लिए बहुत सी रुखसारों और तवाइफों को तलब किया जाता था और इसने इन तवाइफों को नायकों को मुख्तलिफ खुतबात से भी नवाजा है। महल के अखराजात गैर मामूली हैं और वो किसी तौर 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होते, जो तरीन के सके के मुताबिक 1.5 के वल्यूर के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें इन सरापाहों की रकम भी शामिल है जो बादशाह सिपा सलारों और अहदेदारों को बख्शता है। इन अखराजात पर यकीन महज इस सूरत में किया जा सकता है जब हम ये जान लें कि हिंदुस्तान में हर शख्स अतर और फूलों का हद से ज़्यादा शाइश है। ये लोग मुख्तलिफ इकसाम अतर अरक गुलाब और मुख्तलिफ फूलों से कुशीदा करदा खुशबूदार तेलों पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। इन अखराजात के अलावा वो पान का खर्च है जो हमेशा उनके मुंह में होता है। ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि यह अखराजात रोज़मर्रा के हैं, इनमें बेश कीमत पत्थरों की खरीद का खर्च भी शामिल है। इस सबब से सुनार जेवरात बनाते हैं, हमा वक्त मसरूफ़ रहते हैं। इन सुनारों के बेहतरीन और बेश कीमत काम वो होते हैं जो वह बादशाह की बेगमात और शहजादियों के लिए करते हैं। बेगमात और शहजादियों का महबूब मुश्किल ये होता है कि वो अपने जेवरात को देखती और दूसरों को दिखाती रहती हैं, लेकिन उसकी वजूहात हैं। मुझे खुद कई बार इन खवातीन की रहाइश गाहों में जाने का इत्तफाक हुआ है, इसलिए कि उन्होंने किसी न किसी तौर पर मुझसे मशवरा करने ज़रूर करार दिया है। उन्होंने मुतबाद अपने जेवरात और हीरे जोहरात महज इसलिए मंगवाए हैं कि आगाज़ कलाम हो सके। इन्हें सोने के तबाकों में लाया जाता है, वो मुझसे इनकी खूबियाँ और खसाइल दरियाफ्त करती हैं और इसी किस्म की दूसरी बातें करती हैं। इस दौरान मुझे इसके बगूर मायने का मौका मिला और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने हर तरह पत्थर देखे हैं। बाज़ गैर मामूली तौर पर बड़े होते हैं, यकसा पेमाइश के बड़े मोतियों के हार जिन्हें पहले पहल देखकर तो मुझे बहुत मुख्तलिफ इकसाम के फूलों का शोभा हुआ। मैं मुख्तलिफ इकसाम के फल इसलिए कहता हूँ के लालों में इस तरह सुराख करके गूंदा गया था जिसे मोतियों को गूंद देते हैं और वो अखरोट के बराबर थे। उनके सुर्ख रंग की चमक से मोतियों के रंग भी मुख्तलिफ हो गए और मुझे सब के सब फल मामूल होते थे। यह खावतीन अपने लाल इस तरह यूं रखती हैं कि इसके वज़न और पमाश में फ़र्क ना आने पाए। इन्हें यह अच्छी तरह मालूम है कि इनके अलावा और कोई इन्हें नहीं पहनेगा अलावा अजी, और वो ये ज़रूर महसूस नहीं करती कि उन्हें फ़रोख्त करें, इसलिए वो उनमें सुराख करने में कोई हर्ज नहीं समझती। वो जोहरात उनकी मालाओं को दोनों कंधों पर डालती हैं और उसके साथ दोनों जानब मोतियों को 3-3 लड़ियां होती हैं। बिलअमूम मोतियों के 3 या 5 माले गले में भी डालती हैं जो पेट के निचले हिस्से तक शख्सी हैं और सर के दरमियान मोतियों का एक गुच्छा होता है जो माथे के दरमियान तक आता है, जिसके साथ एक कीमती जेवर होता है जिसमें कीमती पत्थर जुड़े होते हैं और जो सूरज या चांद या किसी सितारे की शक्ल का होता है और अक्सर उकात मुख्तलिफ फूलों से मुशाबा भी होती है। ये उन पर बहुत फपता है। छोटा सा गोल जेवर होता है जिसमें दो मोतियों के दरमियान एक छोटा सा लाल जुड़ा होता है। कानों में कीमती पत्थर और गले के चारों तरफ बड़े बड़े मोतियों या कीमती पत्थरों की माला होती है और इन पर एक और कीमती जेवर होता है जिसके दरमियान एक बड़ा हीरा या लाल या जमर या नीला और चारों तरफ बड़े बड़े मोती होते हैं। वो कहनी से ऊपर बाजुओं ऊपर 2 इंच जोड़े कीमती बाजूबंद पहनती हैं जिन पर कीमती पत्थर जुड़े होते हैं और उनमें मोतियों के छोटे छोटे गमले तलकटे होते हैं। कलाइयों पर कीमती पहुंचियां होती हैं या मोतियों की लड़ियां जो 9 या 12 12 लमटी होती हैं। इस तरह अक्सर औकात उनकी नब्ज़ इतनी छुप जाती है कि मुझे नब्ज़ पर हाथ के रखने में वक्त महसूस होता है। उंगलियों में कीमती अंगूठियां होती हैं और दाहिने अंगूठे में हमेशा एक ऐसी अंगूठी होती है जिसमें पत्थर के बजाय छोटा सागू आईना जुड़ा होता है जिसके चारों तरफ होती हैं। इस आईने को वो अपनी सूरत देखने के लिए इस्तेमाल करती हैं और ये वो काम है जिसका शौक इन्हें हमा वक्त रहता है। अलावा जी कमर के गिर्द और अंकल जोड़ सोने का कमर जेब होता है जिस पर बड़े बड़े कीमती पत्थर जुड़े होते हैं। अजारबंद के सिरे पर लालों के घुपे होते हैं जिनकी 15 लड़ियां होती हैं और जिनकी लंबाई 5 उंगल होती है। पैरों में धात के कड़े या मोतियों की लड़ियां होती हैं। सारी शहजादियां के पास जोहरात के 6-8 मजमूए होते हैं। दूसरों और भी होते होंगे जिनके बारे में कुछ नहीं कहना। इन जोहरात को ये अपनी मर्जी के मुताबिक पहनती हैं। इनके लिबास आला और कीमती होते हैं जिन्हें अतर गुलाब से मुअत्तर किया जाता है। मौसम के तकरीबात के बायस जो मुग़ल ममलकत की खसूसियत हैं वो अपने लिबास दिन में कई कई बार तब्दील करती हैं। हिंदुस्तान की सारी औरतें अपने हाथ पैरों को एक ख़ास मिट्टी से मुअत्तर करती हैं जिसे मेहंदी कहते हैं जो इनके हाथ पैर ऐसे सुर्ख कर देती हैं गोया वो दास्ताने पहने हों। वो इसके लिए वैसा ही करती हैं कि हिंदुस्तान की शदीद गर्मी के सबब वो ना तो दस्ताने पहन सकती हैं और ना मोज़े। इसी सबब वो इतने बार एक कपड़े पहनती हैं कि इनका जिस्म दिखाई देता है। वो इस कपड़े को साड़ी कहती हैं और दूसरे मलमल बिल अमूम वो 2 या 3 कपड़े पहनती हैं जिनमें से हर एक का वज़न आधी छटाक से ज़्यादा नहीं होता और जिसकी कीमत 40-50 रुपए होती है। ये कीमत इस अबेल के अलावा होती है जो वो बिलअमूम इन पर टाकती हैं। वो इन्हें कपड़ों को पहनकर सोती हैं जो 20 घंटों के बाद उन्हें तब्दील कर लेती हैं। फिर उन्हें दोबारा नहीं पहनती बल्कि अपनी मुलाजमों को बख्श देती हैं। उनके बाल हमेशा अच्छी तरह बने सनवारते और खुशबू और तेदाल से मुअत्तर होते हैं। वो अपने सर को एक सुनहरे कपड़े से ढांकती हैं जो मुख्तलिफ किस्म और रंग के होते हैं। सर्द मौसम में यानी इन दोनों में जब गर्मी कम पड़ती है इसलिए कि हिंदुस्तान में लोग ये जानते हैं कि नहीं के जाड़ा क्या होता है तो हाँ इस मौसम में वो वही लिबास पहनती हैं। इसी लिबास पर उम्दा कश्मीरी से बनी हुई एक ऊनी कबा डवाल लेती हैं। कपड़ों के ऊपर उम्दा ऊनी 2 सलाए और अड़ती में जो इतने बारीक होते हैं एक छोटी सी अंगूठी के अंदर गुजार से जा सकते हैं। रात के वक्त उनका सबसे बड़ा मशगला ये है कि वो बड़ी बड़ी मछलें रोशन करती हैं जिन पर 1,50,000 रुपये खर्च होते हैं। ये मछलें मोम या तेल की बनाई होती हैं। बादशाह की इजाज़त से कुछ बेगमात पगड़ी बांधती हैं। पगड़ी में एक कीमती कलगी होती है जिसके चारों तरफ मोती और कीमती पत्थर जुड़े होते हैं। ये उन पर बहुत फबती हैं। वो बहुत ज़्यादा हसीन नज़र आती हैं। تفریح تقریبات کے موقعوں، مثلا رقص وغیرہ کے لیے رقصاریں ہوتی ہیں جنہیں اس قسم کی مراحت حاصل ہوتی ہیں۔ ان بیگمات اور شہزادیوں کو حبیب خرچ ان کی پیدائش اور حیثیت کے مطابق ملتا ہے۔ ان کے علاوہ انہیں بادشاہ کی طرف سے اکثر رقو عطر، پان یا پوش کے لیے بھی مل جاتی ہیں۔ اس طرح وہ بے فکری سے زندگی گزارتی ہیں، اپنی شان و شوکت کے اظہار، شبانہ ٹھاٹ باٹ کی نمائش، خود کو دلوز بنانے کی کوشش دینا میں ہر چہارم جانب چرچے کی خواہش اور بادشاہ کو خوش کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپس کے حسد کو وہ مثلاً چھپائے رکھتی ہیں۔ محل میں جب کوئی شہزادی پیدا ہوتی ہے تو تمام عورتیں جشن مناتی ہیں اور اس خوشی کے اظہار میں کثیر رقم صرف ہوتی ہے، اور اگر کوئی شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو اس جشن میں سارا اور سارا شریک ہوتا ہے، جو بادشاہ کے حکم کے مطابق کئی کئی دن منایا جاتا ہے۔ شادیاں نئے بجے میں موسیقی گونجتی، امرا بادشاہ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو رات روپے، ہاتھی یا گھوڑے کی صورت میں تحفے تحائف نظر گزرتے ہیں، اسی دن بادشاہ شہزادہ کا نام رکھتا ہے اور اس کا حبیب خرچ مقرر دیتا ہے، جو فوج کے سالار اعظم کی تنخواہ سے زائد ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ ان عہدے داروں کا تقرر بھی کر دیتا ہے جن کے ذمے نوزائیدہ شہزادے کی املاک کو دیکھ بھال ہوتی ہے۔ سال کے آخر میں کسی ایسے شہزادے کی امنی کی بچت کو خزانے میں علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد جب اس کا اپنا محل ہو جاتا ہے تو یہ جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ 50,000 کے منصب کی آمدنی سے زائد آمدنی کسی شہزادے کی نہیں ہوتی، یہ منصب بالعموم اکبر کا ہوتا ہے۔ فی زمانہ یہ منصب شاہ عالم کا ہے، جس کی آمدنی 2 کروڑ روپے ہے۔ اس شہزادے کے محل میں 2,000 عورتیں ہیں اور اس کا دربار اتنا ہی پرشکوہ ہے جتنا کہ اس کے باپ یعنی بادشاہ کا ہے۔ جب یہ شہزادہ اسے باپ کا محل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں میں اضافے کے لیے تدابیر کرتے ہیں۔ وہ ہندو راجاؤں اور ان مسلمانوں سے پسلاروں سے خفیہ خط کتبات کرتے ہیں۔ بادشاہ بن جانے کے بعد ان کی حیثیت اور تنخواہ میں اضافے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ شرط طے کر لیتے ہیں، اور اگر ان شہزادوں میں سے کوئی تخت پر بیٹھ گیا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سے وفاداری برتی ہے۔